समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
भारत की जीत का जश्न, आधी रात में खुशियों से सराबोर हुआ पूरा देश। कहीं फूटे पटाखे तो कहीं मनी दिवाली। शेफाली कुछ यही भावना रही होगी जब कल रात करोड़ों भारतीय टकटकी लगाए अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले उन 11 खिलाड़ियों की तरफ देख रहे थे।
जी बिल्कुल,
मैं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं शेफाली, और आज हम सिर्फ यही कहेंगे शेफाली
जी।
और ये जिक्र इसलिए क्योंकि भारत ने 17 सालों का वनवास छोड़ते हुए T20 क्रिकेट विश्व कप में शानदार जीत हासिल की है। भारत की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम और देशवासियों को बधाई दी है।
टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया।
वहीं कल के बाद हम भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2020 क्रिकेट खेलते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पूरा देश इस जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन हमें राहुल द्रविड़ को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत हमने ये जीत हासिल की। एक कोच के तौर पर ये उनका आखिरी मैच था। इसी जश्न के साथ ही आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शेफाली।
Hello Akashita and dear listeners, continuing in the spirit of celebration, for cricket is more than just a sport, it's a way of life that we all adore. So let's start with our daily news program, Aaj Savere, wherein we'll share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 30th June 2024. So let's begin with the headlines first.
भारत ने ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। ये भारत का 17 साल बाद दूसरा T20 विश्व कप खिताब था। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर यह जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विराट कोहली के 59 गेंदों पर 76 रन और अक्षर पटेल के 31 गेंदों पर 47 रनों की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किसी भी टीम का यह सर्वाधिक स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनरिक नॉटेजे और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासेन के 52 रनों की मदद से 8 विकेट पर 169 रन ही बना सके। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए। विराट कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 8 मैचों में 15 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित शर्मा ने कहा कि इस प्रारूप को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने T20 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कभी न हार मानने की भावना के साथ टीम इंडिया ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए असाधारण जीत हासिल की है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश को टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये मैच ऐतिहासिक था।
More than 13,000 pilgrims visited the holy cave shrine of Amarnath yesterday on the first day of the annual pilgrimage in the South Kashmir Himalayas amid tight security. Meanwhile, another batch of 6,619 pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu for the Kashmir Valley to perform pilgrimage to Amarnath cave shrine. Chanting Bam Bam Bhule, the pilgrims left the base camp in a cavalcade of 319 early this morning. These included 5,143 men, 1,141 women, 18 children, 241 sadhus and 76 sadhuis. Of these, 2,781 pilgrims left for Baltal at 3:50 a.m. and 3,838 for Pehelgam base camp started their journey at 4:45 a.m. With this, the number of pilgrims who left for the Amarnath cave shrine from the Jammu base camp climbs to 15,251.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा।
Conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of West Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Punjab and remaining parts of West Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu during next 2 to 3 days. India Meteorological Department, IMD, has said that isolated heavy rainfall is very likely over Konkan, Goa, Madhya Maharashtra till Wednesday. It said that very heavy rainfall will also prevail likely over Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, East Rajasthan and Madhya Pradesh 3 to 4 days. Extremely heavy rainfall to be observed in Northeast India for the next 5 days.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर के सरकारी दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी से मुलाकात करेंगे। डॉ जयशंकर दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और कतर ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला चलता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में कतर का दौरा किया था और वहां के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के साथ बातचीत की थी।
Now news from the sports world. In badminton, India advanced to the quarterfinals of the Asia Junior Mixed Team Championship in Yogyakarta, Indonesia with a 3-2 victory over the Philippines last night. Today, India will face host Indonesia to determine the group winner. Earlier, India began their campaign with a dominant 5-0 win against Vietnam in their Group C opener on Friday. Indonesia has secured a spot in the quarterfinals after defeating the Philippines 5-0 and Vietnam 4-1 in their respective group matches.
NCRB has launched a mobile app, NCRB Sankalan of Criminal Laws. This app is a compilation of new criminal laws, namely Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Bharatiya Saksha Adhiniyam. It is available on Google Play Store as well as Apple App Store. This app is useful for general public, court officers, advocates, law students as well as for police officers in enhancing their knowledge about the new criminal laws. This app serves as a comprehensive guide, providing complete information about the new criminal laws at one place. It provides an index linking all chapters and sections of the new laws and a corresponding chart for section-wise comparison between old and new laws, with a search and linking facility for quick information retrieval. The app is designed to work in offline mode also, in absence of connectivity. With its user-friendly design, comprehensive content and innovative features, the app empowers users to learn the new laws effectively.
और अब आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें आइए जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद की खबरें शिफाली से।
Yes, let's start with news from Chennai. The Controller and Auditor General of India has pointed out some shortfalls in the registration process of unorganized construction workers and the implementation of welfare schemes for them. A joint audit with the Directorate of Industrial Safety and Health at 21 sites revealed that 398 out of 501 construction workers employed were interstate migrant workers and no one was registered with the board. The CAG pointed out that the photographs of the identified migrant workers must be captured at the construction site and registration cards should be issued within a week. These workers will become eligible for all schemes of the board except pension. Even though the registration of workers is voluntary, there is a need for coverage of non-registered workers in the state for providing scheme benefits. In another news from Chennai, IIT Madras has launched an online MBA in Digital Maritime and Supply Chain program for working professionals. The program will offer a blend of online learning and on-campus immersion modules. Candidates will engage in cutting-edge digital technologies such as Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning and Blockchain. The course will train candidates to use technology to solve shipping-related problems from port management to ship movement. The two-year degree program is jointly developed by the Department of Management Studies and Department of Ocean Engineering, IIT Madras. The chairperson K. Murali said that there is a plan to enroll 30 to 100 candidates in the first year. The course is tailor-made for working professionals and can be extended up to 4 years. And now news from Bengaluru. The Bangalore Development Authority, BDA, has introduced a new digital platform to streamline the process for citizens to lodge complaints and address grievances. The platform aims to facilitate appointment scheduling with officials when necessary, alleviating the common issue of citizens having to rely on brokers to access BDA officials. BDA Chairman N. A. Harris informed that the platform is already operational and has received 55 complaints till 28th of this month. The platform provides a dashboard accessible to the BDA Chairman, Commissioner and a designated nodal officer, ensuring efficient monitoring and response to complaints. Citizens can register their complaints and grievances directly on the platform. These complaints will then be analyzed by the competent authority. If a personal meeting with officials is deemed necessary, appointments will be scheduled through the system. The platform will enhance transparency in the grievance redressal process at the BDA. Officials are required to address complaints promptly with daily monitoring of their responses. Any unattended complaints will be escalated to senior officials who will ensure that their subordinates resolve the issues. This system aims to facilitate direct access to officials and improve the efficiency of complaint resolution by managing appointments digitally. And now news from Hyderabad. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has assured to resolve all issues and protect the interests of tobacco farmers and industry stakeholders. Addressing representatives of tobacco farmers and industry representatives in Hyderabad last night, the minister assured to make all efforts to waive the penalty on excess tobacco produced by the farmers. He urged the tobacco farmers to avail the 3% interest subvention facility under Agriculture Infrastructure Fund on the loans they take from the banks at 9% interest rate. Stating that Prime Minister Narendra Modi is very sympathetic towards the farmers, Mr. Goyal said that the Union Government will do everything to protect the farmers' interests. The Commerce Minister also announced that the period of validity of farmers' registration will be increased from the present 1 year to a period of 3 years from next crop season onwards. He also urged the farmers to register themselves online. However, the Minister said the offline registration is also available for the benefit of small farmers. Parliament member Purandeshwari and senior officials and representatives of farmers and industry were present on the occasion. In another news from Hyderabad, Telangana Chief Minister A. Revant Reddy has ordered a forensic audit over the escalation in the estimated cost of construction of the Warangal Super Speciality Hospital. He visited the hospital yesterday and reviewed progress made on several works. The Chief Minister questioned officials over the surge in the cost of construction of the 24-storey hospital to over 1,726 crore rupees from 1,100 crore rupees without approvals. He directed the construction company L&T to complete construction by March next year. The Chief Minister also instructed officials to develop the city on par with Hyderabad and asked them to prepare a master plan 2050. The Chief Minister also inspected the Kakatiya Mega Textile Park, where he unveiled the Vana Mahotsavam logo and planted a sapling. He directed officials to prepare proposals to provide essential amenities at the housing layout for those displaced by the textile park. He announced that each plot allottee will receive 5 lakh financial assistance under the Indiramma housing scheme. And now, listeners, for the news from Delhi, Mumbai and Kolkata, let's move to Akarshita.
Ji, ab shrotao, ab chalte hain Delhi ki or. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के लिए निर्धारित उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि इन उड़ानों ने आज से टर्मिनल 2 और 3 से परिचालन शुरू कर दिया है। राजधानी के दक्षिणी रिज में 1,100 पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सौंपेगी। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन होंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भी पेश की जाएगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रिज क्षेत्र का दौरा किया था और उनके मौखिक आदेश पर पेड़ काटे गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल जल जमाव से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों और नालों का निरीक्षण कर संबंधित एजेंसियों को साफ सफाई का निर्देश दिया। श्री सक्सेना ने दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा और मासूरी स्वराज के साथ तैमूर नगर, बारापुला ड्रेन, आईटीपीओ, तिलक ब्रिज, कुशक नाला और गोल्फ लिंक का दौरा किया। अपने निरीक्षण में उपराज्यपाल ने पाया कि इन सभी क्षेत्रों की नालियां भारी गाद और कचरे के कारण बुरी तरह से जाम हो गई थी और शहर में पानी का बैकफ्लो शुरू हो गया था। इसके अलावा उन्होंने पाया कि अतिक्रमण के कारण नालियों और सीवर लाइनें भी जाम हो गई थी। श्री सक्सेना ने कहा कि इन सभी नालों की सफाई जून के मध्य तक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को युद्ध स्तर पर नालों से गाद निकालने, नालों के किनारे से भी कचरा, मलबा और कीचड़ एवं गाद को जल्द से हटाने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि इस साल भारत 800 अरब डॉलर का ऐतिहासिक निर्यात करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने मुंबई में भारत रत्न मेगा सीएफसी में हितधारकों के साथ एक सार्थक बातचीत की और सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रसंस्करण क्षेत्र, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम और पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रण की प्रगति की समीक्षा की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कल राज्य विधानसभा को बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा राज्य के विभिन्न खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और विधानसभा को आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो मानदंड में और अंक जोड़े जाएंगे ताकि राज्य का नाम रोशन करने वाला कोई भी खिलाड़ी लाभ से वंचित न रहे। मॉनसून के मौसम से पहले पश्चिमी और मध्य रेलवे मॉनसून की तैयारियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसमें पटरियों, यांत्रिकी और सिग्नलिंग, विद्युत उपकरणों आदि जैसे रेलवे परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए एक मिशन उन्मुख दृष्टिकोण शामिल है। मुंबई में रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि मॉनसून के मौसम के दौरान निर्बाध ट्रेन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने किसानों से बीमा के लिए अतिरिक्त पैसे मांगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अगर कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के खिलाफ कोई शिकायत सबूत के साथ मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए फसलों का बीमा एक रूपये में दिया जा रहा है और उन्होंने किसानों से अपील की है कि अगर कोई अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो वे सीधे सीएससी सेंटर संचालकों की रिपोर्ट दें। पालघर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में बढ़ती सिकल सेल बीमारी को देखते हुए कल एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 327 लोगों की इस बीमारी की जांच की गई जिसमें से 10 छात्र पॉजिटिव पाए गए। ये शिविर महाराष्ट्र के पालघर जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत आयोजित किया गया था। मेडिकल प्रोफेशनल ने छात्रों को बताया कि सिकल सेल रोग कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव के उपाय बताए। सिकल सेल रोग अनुवांशिक होता है और ये माता पिता से बच्चों में आता है। अगर माता पिता दोनों सिकल सेल के वाहक हैं तो बच्चों में बचपन से ही इस बीमारी के होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अगर शादी से पहले लड़के लड़कियों का सिकल सेल घुलनशीलता परीक्षण किया जाए तो इस बीमारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया जा सकता है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Yes, now let's have a look at the weather of our southern states. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
On this day in the year 1799, Krishnaraj Bodiyar was once again declared as the king of Mysore.
1937 में दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था और 1938 में बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक में नजर आया। वहीं 1966 में अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का गठन किया गया।
And in the year 1995, Doordarshan, in a landmark step in opening up the country to foreign television networks, signed an agreement to allow CNN to broadcast to the subcontinent.
वहीं 2000 में अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी। वहीं 2005 में स्पेन ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया और 2008 में रविकांत, उमाशंकर चौधरी व विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब बात करते हैं उन शख्सियतों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या जन्मदिन है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले याद कर रहे हैं आज दादा भाई नौरोजी को। उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वे दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। श्री दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष अत्यंत उज्ज्वल रहा। 1845 में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए। यहां के एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी। अनेक संगठनों का निर्माण दादा भाई ने किया। 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई और लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने। 1906 में उनकी अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। दादा भाई ने कहा था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं।
Yes, and I would also like to tell our listeners that he was also called the Grand Old Man of India and Unofficial Ambassador of India. And dear friends, today is also the death anniversary of Chester Burton Atkins, or Chet Atkins, also known as Mr. Guitar and the Country Gentleman. He was an American musician who helped create the Nashville sound, the country music style, which expanded its appeal to adult pop music fans. Chet Atkins was primarily a guitarist, but he also played the mandolin, fiddle, banjo, and ukulele, and occasionally sang as well. Atkins' signature picking style was inspired by Merle Travis, and you'd be interested to know that he received 14 Grammy Awards and the Grammy Lifetime Achievement Award, so let's listen to his music.
अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जी हां, ये पंक्तियां हैं आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार नागार्जुन की। आज उनकी जयंती है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और वे मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखा करते थे, परंतु हिंदी साहित्य में वे बाबा नागार्जुन के नाम से मशहूर थे। नागार्जुन ने अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी के ये महान कवि नागार्जुन के नाम से जाने गए। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृति तथा बंगला में कविताएं लिखते थे। मैथिली भाषा में लिखे गए उनके काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाच के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी काव्य मंच पर अपनी सत्यवादिता और लाग लपेट से रहित कविताएं लंबे युग तक गाने के बाद 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में ये रचनाकार हमारे बीच से विदा हो गए। उनकी प्रमुख रचनाएं थी रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेर सरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे। उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया।
And dear listeners, today is also the birthday of Sayyid Akhtar Mirza, an Indian screenwriter and director in Hindi films and television. He's the maker of notable parallel films such as Mohan Joshi, Hazir Ho, Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Saleem Langre Pe Mat Ro, and Naseem, which won 2 National Film Awards in 1996. He's also the director of the popular TV series Nukkar and Intizar, along with various documentary films on social welfare and cultural activism. So let's listen to a song from one of his movies, Amchi Bombay, from Mohan Joshi, Hazir Ho.
आमची है बम्बई, तुमची मुंबई, जियो मजे दे करुण का खाई खाई।
आमची है बम्बई, तुमची मुंबई, जियो मजे दे करुण का खाई खाई।
तो देखो ये बम्बई की शान, बम्बई शहर है सबसे महान।
हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह की आज जयंती है। वे भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे। कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे। भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय कल्याण जी को ही जाता है। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने लगातार 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। उपकार, छलिया, हिमालय की गोद में, पूरब पश्चिम, सट्टा बाजार, सच्चा झूठा तथा जॉनी मेरा नाम से वे काफी प्रसिद्ध हुए। उन्हें संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए 1968 तथा 1974 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा फिल्म फेयर पुरस्कार और 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं फिल्म छलिया में उनके संगीत से सजा गीत डम डम डिगा डिगा।
डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, गिनती है मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और शिफाली को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने का, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।